यमुना से
घटनाएं घट रही हैं कि धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर क्या किया, उस पुण्य भूमि पर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। और जब संजय इस बात का उत्तर दे रहे हैं तो संजय उत्तर में सबसे पहले अब जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि मेरे दुर्योधन ने या मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो उसका विवरण संजय सबसे पहले दे रहे हैं। तो जब दुर्योधन ने ये देखा कि जो पांडु सेना है, पांडवों की सेना है, वो अज्ञातवास और वनवास के पश्चात भी इतनी विशाल सेना पांडवों ने इकट्ठा कर ली, तो दुर्योधन भयभीत हुआ। और उस भयभीत अवस्था में दुर्योधन अब वो आचार्य द्रोण के समक्ष जाकर वो अपना प्रस्ताव रख रहा है, परंतु क्योंकि वो एक बहुत ही निपुण राजनीतिज्ञ है, अर्थात निपुण राजनीतिज्ञ होने का अर्थ है कि वो कपटी है। जैसे कोई व्यक्ति यदि कहे कि वो निपुण चोर है, तो वैसे निपुण राजनीतिज्ञ ये कापट्य के ही समान है। तो वो अपना कापट्य इस्तेमाल कर रहा है दुर्योधन, और द्रोणाचार्य को उल्लेख करते हुए हमने ये सब श्लोकों की चर्चा कर ली है। तो अब हम पहुंचते हैं श्लोक क्रमांक 10। आज हम लेंगे श्लोक क्रमांक 10 और 11, क्योंकि बस अब 10 और 11 ये अंतिम श्लोक हैं दुर्योधन जो द्रोणाचार्य के समक्ष बोल रहा है। इसके पश्चात फिर इस अध्याय का दूसरा चरण शुरू होगा। तो आज हम ये दो श्लोक लेंगे। अपर्याप्तम तदस्माकम् बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषाम् बलम भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तम तदस्माकम् बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषाम् बलम भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तम तदस्माकम् बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषाम् बलम भीमाभिरक्षितम्। हम इतनी बार ये श्लोक इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग इन श्लोकों को याद करने का प्रयास कीजिए। और कहा गया है कि भगवद गीता की जो संस्कृत श्लोक हैं, यदि भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों का कोई एक अक्षर भी उच्चारण करता है या आधा अक्षर भी उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है कि हम भगवद गीता जो भगवान की साक्षात वाणी है उसको दोहराएं। इसे अक्सर लोग जो ओरिजिनल होता ना, ओरिजिनल गीत जिसने गाए हैं उसे गाना या उसे सुनना पसंद करते हैं, तो वैसे ये ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण का गीत। तो अब इस श्लोक में दुर्योधन अपनी राजनीति इस्तेमाल करते हुए द्रोणाचार्य को कह रहा है अपर्याप्तम तदस्माकम् कि हे आचार्य, कृपया करके देखो कि जो हमारी सेना है वो किसके द्वारा रक्षित है और जो पांडवों की सेना है वो किसके द्वारा रक्षित है, और दोनों सेनाओं की गणना करते हुए दुर्योधन अब आचार्य द्रोण से कहता है अपर्याप्तम कि अपर्याप्त इसका अर्थ बहुत ही विशेष है। अब आपने ये शब्द सुना होगा पर्याप्त। पर्याप्त का अर्थ क्या है? हाँ, सफिशियंट या इनफ अंग्रेजी में जिसे कहेंगे। तो यहां पर पर्याप्त शब्द के दो अर्थ हैं, या अपर्याप्त, यहां पर अपर्याप्त कहा है दुर्योधन ने। तो एक है अपर्याप्त अर्थात इनसफिशियंट, और अपर्याप्त का एक और अर्थ है अपरिमेय। इसलिए अंग्रेजी में लिखा है कि वो ज्यादा समझ में आता है आजकल। वो अपरिमेय तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, इसलिए अपरिमेय का अर्थ है इमेजरेबल। तो यहां पर देखिए, एक ही शब्द दुर्योधन इस्तेमाल कर रहा है अपर्याप्तम, परंतु इस एक शब्द के द्वारा दुर्योधन द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों को उल्लेख करते हुए कह रहा है कि यहां पर जब दुर्योधन कह रहा है अपर्याप्तम, यदि इसका यह अर्थ लिया जाए इनसफिशियंट, तो वो कह रहा है द्रोणाचार्य को कि भीष्म द्वारा रक्षित, बलम भीष्माभिरक्षितम, कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी ये जो सेना है ये अपर्याप्त है, अर्थात इनसफिशियंट, पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भीष्म द्वारा रक्षित है, इसलिए कहा उसने बलम भीष्माभिरक्षितम, क्योंकि भीष्म द्वारा रक्षित है इसलिए हमारी सेना अपर्याप्त है। इसलिए हे द्रोणाचार्य, आप हरी मैं निर्भर हूं, आप ही कुछ कर सकेंगे। तो यहां पर द्रोणाचार्य को अच्छा लगे, इसलिए द्रोणाचार्य अपर्याप्तम को इस प्रकार से समझेंगे, और भीष्म उनको भी सुनाते हुए दुर्योधन अपर्याप्तम कह रहा है। अर्थात जब वो भीष्म को सुनाते हुए अपर्याप्तम कह रहा है तो तब अपर्याप्तम का अर्थ भीष्म ये लेंगे। तो इसलिए ये जो दूसरा अर्थ है अपर्याप्तम का, अपरिमेय इमेजरेबल, ये भीष्म के संदर्भ में दुर्योधन कह रहा है कि बलम भीष्माभिरक्षितम, हे भीष्म देव, आपके द्वारा रक्षित ये जो हमारी सेना है अपर्याप्त, इमेजरेबल। तो यहां पर देखिए दुर्योधन, उसने एक शब्द कहा और एक शब्द से दो तीर, कहते हैं ना एक तीर दो निशाने, तो एक शब्द से वो दो जगह पर अपना निशाना लगा रहा है। तो इसलिए दुर्योधन वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो बहुत संस्कृत भाषा में भी बहुत निपुण था। तो इसलिए उसके शब्दों का फेर भी कोई साधारण फेर नहीं था। तो इसलिए अब वो अपर्याप्तम इस शब्द को कहते हुए आगे अब दुर्योधन में क्या दिख रहा है कि दुर्योधन फिर भीम को दिखा रहा है, जैसे कि उसने चौथे श्लोक में भीमसेन को दिखाया था द्रोणाचार्य को। कौन सा श्लोक याद है? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च। तो यहां पर दुर्योधन उस श्लोक में, चौथे श्लोक में भी सबसे पहले उसने जब गिनती शुरू की पांडु सेना की, तो उसमें सबसे पहले नाम लिया भीमार्जुन समायुधि, और हमने कारण लिया था क्यों दुर्योधन भीम का नाम पहले ले रहा है, क्यों अर्जुन का नाम पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक दृष्टिकोण से या हर दृष्टिकोण से अर्जुन वो सबसे प्रसिद्ध योद्धा थे पांडवों के पक्ष के, तो क्यों भीम का नाम पहले लिया दुर्योधन ने? अर्जुन का क्यों नहीं पहले लिया? हाँ, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। हाँ, एक ये भी कारण है, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी, हाँ, गदा युद्ध में दोनों प्रतिस्पर्धी। दुर्योधन सबसे ज्यादा भीम से डरता था, इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी इसमें यदि आप देखो तो जब व्यक्ति तीन बार तीन तरीके में किसी व्यक्ति के विषय में सबसे ज्यादा सोचता है, तीन भावनाओं में जब वो रहता है, सबसे पहले जब वो किसी व्यक्ति या वस्तु से सबसे ज्यादा भयभीत रहता है तो भय के कारण केवल उसी का ध्यान होता है, केवल उसी का ध्यान। जैसे उदाहरण कंस, कंस ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, ये श्रीमद् भागवत में कंस का गुणगान हुआ है, कंस का गुणगान हुआ है कि कंस ने भगवान की आराधना की भय के द्वारा, कि भय के द्वारा कंस हर समय भगवान कृष्ण 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 बलराम इनके विषय में सोचता रहता। तो जब ये एक मन में किसी की भावना होती है, किसी के प्रति भय की भावना, तो भय के कारण 2400 घंटे वही व्यक्ति ध्यान में रहता है। इस भौतिक संसार में हम देखेंगे कि कितने सारे भय हैं जिसके वजह से हमारा मन केवल उन्हीं विषयों के ऊपर केंद्रित रहता है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु, और मृत्यु के भय के वजह से सभी हम अलग अलग प्रकार से अपनी सुरक्षा बनाए हुए हैं। रोज हम खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर अपने लिए बांधे हैं, फिर उसमें कितनी सुरक्षाएं घर के अंदर, फिर लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस क्या क्या हमने नहीं अपने लिए कर लिए। तो ये सब क्या है, केवल जो भय है मृत्यु के लिए, मृत्यु के प्रति, उसके वजह से। तो ये एक हमारे अंदर इमोशन या भावना है जिसके कारण हमारा मन उसी में रचा पचा रहता है। और दूसरी एक भावना है जिसके कारण हमारा ध्यान किसी व्यक्ति या वस्तु में रहेगा हर समय, वो है ईर्ष्या। जब किसी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है तो हर समय उसी व्यक्ति के विषय में सोचते रहते, अब वो क्या कर रहा होगा। विशेष रूप से जब विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी से ईर्ष्या करता है तो हर समय वो सोचता रहता है, उसने कितनी पढ़ाई कर ली, मुझसे ज्यादा तो मार्क्स नहीं ला रहा, वो भी एग्जाम टाइम, ये जो एग्जाम टाइम अभी चल रहा है कि हो गया एग्जाम चालू है, तो एग्जाम टाइम में वो लोग ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या के कारण उसी के विषय में ज्यादा, अपनी पढ़ाई से ज्यादा उसके विषय में सोचते हैं। पड़ोसी जब ईर्ष्या हो जाती है किसी पड़ोसी से तो फिर उसी के विषय में ज्यादा चिंतन होता है, उसके थाली में कितना, अपनी थाली में कितना, वो नहीं उसके थाली में कितना। तो ईर्ष्या ये भी एक भावना है जिसके कारण वो व्यक्ति का ध्यान हर समय बना रहता है। और तीसरा शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम के कारण किसी दूसरे व्यक्ति का ध्यान हर समय बना रहेगा। तो ये तीन कारण हैं। अब इन तीन कारणों में हम देखेंगे कि दुर्योधन ये बार बार भीमसेन को दिखा रहा है, द्रोणाचार्य को, पहले चौथे श्लोक में भी, अभी भी। अभी क्या कहा उसने, बलम भीष्मा भिरक्षितम और भीमा भिरक्षितम, कि हमारी सेना भीष्म देव द्वारा रक्षित और उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित। तो यहां पर हम देखेंगे कि या तो भीम से अत्यंत प्रेम करता है दुर्योधन, इसलिए हर समय भीम का नाम आ रहा है, बार बार उसी का नाम लबों पर आता है। तो यहां पर या तो दुर्योधन भीम से बहुत प्रेम करता होगा या अत्यंत द्वेष। तो यहां पर कारण क्या है? अत्यंत द्वेष, ये कारण बताया गया है कि द्वेष के कारण वो बार बार भीम का नाम, और दुर्योधन द्वेष के कारण अपनी सूझबूझ खो दिया है। वो कैसे ये समझा जाए कि इस श्लोक के द्वारा दुर्योधन जान नहीं पा रहा कि उसे भीम का नाम भी यदि लेना है तो किस संदर्भ में लेना चाहिए। उसने यहां पर इस श्लोक में गलती की है। दुर्योधन जो बोल रहा है उस श्लोक में गलती है, बहुत बड़ी गलती है। कोई पहचान पाएगा कौन सी गलती है? हाँ, वो भीम द्वारा रक्षित नहीं थी वो सेना, जैसे कि भीष्म द्वारा रक्षित। वो तो सही कहा उसने कि उनकी सेना भीष्म द्वारा रक्षित, परंतु वो सेना वो भीम द्वारा रक्षित नहीं थी, उनके सेनापति धृष्टद्युम्न। तो यहां पर दुर्योधन इतना ज्यादा, एक तो भयभीत भी और उसके साथ द्वेष, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सोचो कितना डेडली कॉम्बिनेशन है दुर्योधन के अंदर। भीम के प्रति भय भी है और द्वेष भी, इसके कारण उसके शब्द भी वो संभाल कर नहीं बोल पा रहा, इसलिए मुंह से निकल गया भीमा भिरक्षितम, कि भीम द्वारा रक्षित। तो द्रोणाचार्य मानो दुर्योधन की तरफ देखकर, क्या बोल रहा है तू? अरे कुछ सोच विचार कर बोला कर, भीमा भिरक्षितम। तो ये यहां पर हमें दिखने मिलता है कि ये दो जो शब्द इसने इस्तेमाल किए इसमें से एक गलत। अब दुर्योधन के द्वेष के कारण क्या थे? दुर्योधन क्यों वो भीम से, बाकी भी तो थे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इनसे दुर्योधन इतना द्वेष नहीं करता जितना भीम से द्वेष करता था। क्योंकि सबसे पहला कारण बताया गया है कि भीमसेन वो वायुदेव के पुत्र थे, और वायुदेव के पुत्र होने के कारण भीमसेन के अंदर बहुत शक्ति थी, और मानो कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल का फॉर्म यदि ये लोग दोनों भरे हुए होते तो फादर्स नेम भीम ने क्या लिखा? वायुदेव। और दुर्योधन ने क्या लिखा हुआ होता? अंधा धृतराष्ट्र। तो दुर्योधन को हर समय कि एक तो मेरा बाप वो भी अंधा, तो वो हर समय उसे ये बात खाती रहती कि इन सब के जो बाप हैं वो सब इंद्र, वायु और ये सब इनके बाप हैं, अब मेरा बाप एक अंधा। तो इसके वजह से ही उसे पैदाइशी ये द्वेष, और विशेष रूप से भीम के प्रति क्यों? क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे अर्जुन इंद्र के पुत्र, तो क्यों अर्जुन के प्रति उसे द्वेष नहीं था? क्योंकि समान आयु एवं समान शस्त्र धारण करने वाले थे ये दोनों, कि दुर्योधन और भीम दोनों की समान आयु थी, समान आयु और कौन बच्चे हैं, कि दोनों के शस्त्र भी समान, कौन से शस्त्र? गदा। इसलिए द्वेष के अंदर एक इस प्रकार का गुण देखा जाता है, उसे गुण कहें या जो भी कहें, कि द्वेष हर समय उसी व्यक्ति से होगा जो समान होगा हमसे। जब कोई बहुत नीचे है हमसे, उससे द्वेष नहीं हम करेंगे, और जो बहुत ऊपर है उससे भी द्वेष नहीं करेंगे। अब कोई भारत के प्रधानमंत्री से द्वेष नहीं करेगा, वो बहुत ऊपर है, और कोई रास्ते चलते भिखारी से भी द्वेष नहीं करेगा, वो बहुत नीचे। परंतु जो हमारे ही ऑफिस में, हमारे ही डिपार्टमेंट में और मेरे ही बगल में बैठता है और समान, हम दोनों समान दिन आए इस ऑफिस में, और एक ही दिन दोनों ऑफिस में आए और एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं, परंतु इसको ज्यादा बॉस का फेवर मिलता है और मुझे नहीं। क्या द्वेष, अग्नि, और उसी के विषय में सोचते रहते हैं, बॉस से ज्यादा उसके विषय में सोचते हैं। तो हर एक जगहों पर आप देखोगे कि भिखारियों में भी वो जो भिखारी हैं दूसरे भिखारी से द्वेष करते हैं, और किसी के ऊपर इतना गुस्सा नहीं उतारेंगे, दूसरे भिखारियों के ऊपर ज्यादा। और यदि कोई किसी डिपार्टमेंट में है, मानो कोई कुकिंग डिपार्टमेंट में है, तो जो दूसरा कुक होगा उसके प्रति थोड़ी भावना अलग होगी। यदि जिसे कुकिंग आती नहीं तो फिर उससे इतना द्वेष नहीं, परंतु उसे मुझसे ज्यादा अच्छा कुछ बनाने को आता है, मुझसे ज्यादा कैसे आ रहा है उसे, तो फिर उसमें कुछ करो, नमक ज्यादा डाल दो गलती से। तो एक तो जो समानताएं होती हैं वो समानताओं के वजह से द्वेष उत्पन्न होता है। तो एक तो ये था कि समान शस्त्र दोनों के। अब भीम, हालांकि सारे जो कौरव और पांडव थे इनको सभी शस्त्र सिखाए गए थे, परंतु स्पेशलिटी इन सब का, विशेषता इन्होंने एक एक शस्त्रों में ली थी। जैसे अर्जुन, अर्जुन को गदा युद्ध भी आता था, परंतु अर्जुन को आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी गदा उठाने की, वो तीर से सारा काम कर देते थे। और युधिष्ठिर महाराज वो भाला, वो भाले से बहुत प्रशिक्षित थे उस युद्ध कला में। और यहां पर भीम, क्योंकि अरे कुछ क्या तीर इतना पतला पतला हाथ में, तो भीम ने इसलिए गदा चुना कि कुछ उठाकर भी दूसरों को दिखाएंगे तो हाँ कुछ है हाथ में, ये क्या तीर इतना सा पतला और ये सब कुछ। तो और भीम को ज्यादा गदा चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हाथ से थप्पड़ उप्पड़ मार के शांत कर देते। बचपन में महाभारत में वर्णन है कि बचपन में भीम इतने शक्तिशाली थे कि वो बचपन में जब बच्चे थे वो, तो गुरुकुल में जब वो दुर्योधन और दुर्योधन के सभी भाई उनको बुलाते चलो हम खेलेंगे, तो दोनों को पकड़ के भिड़ा देते थे, विशेष रूप से दुर्योधन और दुशासन को भिड़ा देते थे। और फिर जंगल में जब ये लोग फल तोड़ने के लिए किसी पेड़ पर चढ़ते, तो यदि आम के पेड़ के ऊपर ये लोग चढ़ते फल तोड़ने के लिए, तो भीम नीचे से पेड़ को हिला देते, तो फल के साथ ये सब नीचे। और दुर्योधन इन सब कारणों के वजह से इतना द्वेष किया करता था वो भीम से, क्योंकि बचपन से भीम के अंदर इतनी शक्ति थी। तो उसने वो विषैले लड्डू, या कई कहते हैं खीर खिलाई, तो जहर डालकर बचपन में भीम को जहर दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भीम 10,000 हाथियों का और बल लेकर आए, तो जो दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा था बचपन में ही भीम को मारने का, उसका विपरीत हुआ कि यहां पर भीमसेन और 10,000 हाथियों का बल लेकर दुर्योधन के सामने सर्टिफिकेट लाके दिखाए ले। तो फिर ये दुर्योधन के अंदर द्वेष की भावना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। इसलिए हमें यहां पर क्या सीखना है कि जैसे दुर्योधन वो भीमसेन से, हालांकि भीमसेन ने स्वयं अपनी तरफ से कभी दुर्योधन को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं किया, परंतु दुर्योधन ही ऐसे प्रतीत होगा कि बिना कारण दुर्योधन द्वेष कर रहा है, परंतु ये सारे कारण थे जिसके वजह से, हालांकि ये बिना कारण आप कह सकते हो कि भाई किसी की यदि कोई हम उम्र का है, समान उम्र का है, क्या ये कारण होगा किसी को द्वेष करने का? अरे भाई हम उम्र के तो दोस्ती करते हैं, है कि नहीं? तो उसके वजह से दोस्ती होनी चाहिए थी, उसकी वजह से प्रेम होना चाहिए था। अक्सर हम ये भी देखते हैं इस कलयुग में कि इन कारणों के वजह से या तो प्रेम जागृत हो सकता है कि हम एक ही स्कूल में एक ही उम्र के एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, इसके कारण प्रेम होना चाहिए, परंतु कलयुग में अक्सर उल्टा होता है। जैसे यहां पर दुर्योधन और भीम के विषय में, दुर्योधन की भीम के प्रति द्वेष की पराकाष्ठा युद्ध के अंत में दिखी, और युद्ध के अंत में कैसे दिखी कि जब सारा युद्ध हो गया, सारी कौरव सेना मारी गई, और अब युधिष्ठिर महाराज जीत चुके हो गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को बोल रहे थे, नहीं, अब तक युद्ध पूरा नहीं हुआ क्योंकि दुर्योधन जिंदा है, दुर्योधन मरा नहीं था, दुर्योधन अब भी वो मूर्छित अवस्था में रणभूमि में था, तो दुर्योधन गिरा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन को ढूंढते हुए, और दुर्योधन को जब उन्होंने ढूंढ लिया तो युधिष्ठिर महाराज, देखिए युधिष्ठिर महाराज का गुण देखिए, युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन हम पांच हैं तुम्हारे सामने, तुम चुनाव करो किसके साथ तुम्हें युद्ध करना है, किसी को भी चुन लो तुम, और तुमने यदि हम में से किसी एक को चुनकर हरा दिया तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं फिर से 12 वर्ष वनवास के लिए तैयार हूं। कृष्ण ने कहा अरे बाप रे, इतना करने के बाद ये बहुत ज्यादा धार्मिक है, ये मुझसे ज्यादा धार्मिक धर्म की स्थापना करने के लिए आए लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण, अरे ये तो करे कराए पे पानी फिरवा रहा है। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज वो कैसे धर्म के पालन करने वाले कि दुर्योधन को इस प्रकार का प्रस्ताव रखा, और वो भी जानते हुए कि दुर्योधन वो गदा युद्ध में इतना माहिर है कि यदि अर्जुन भी दुर्योधन के साथ गदा के साथ युद्ध करे तो अर्जुन हार जाते। तो सोचिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तो वो तो साइड में रख दीजिए उनको, केवल भीम। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण वो डरे हुए कि अब ये दुर्योधन किसका चुनाव करेगा, अगर ये दुर्योधन युधिष्ठिर यदि अर्जुन का भी करता है और बाकी तो छोड़ दीजिए नकुल सहदेव, तो भगवान श्री कृष्ण वो प्रार्थना कर रहे थे कि दुर्योधन भीम को चुने। तो वहां पर कुछ समय के लिए साइलेंस छा गया कि अब दुर्योधन देख रहा है पांचों को कि किसका चुनाव करना है, और दुर्योधन जानता है कि इनमें से केवल भीम गदा युद्ध में माहिर है और कोई नहीं, और यहां पर स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रस्ताव रख दिया कि यदि हम में से कोई एक तुम चुनते हो और उसे हरा देते हो फिर से 12 वर्ष वनवास में जाने के लिए तैयार। दुर्योधन ने जानते हुए भीम का चुनाव किया, क्यों? क्योंकि दुर्योधन वो अब तक उसके द्वेष की अग्नि शांत नहीं हुई थी। सोचिए इतना बड़ा प्रस्ताव सामने उसके आने के बावजूद उसका द्वेष उससे वो छिपा नहीं पाया। और दुर्योधन क्या याद कर रहा था उस समय? दुर्योधन कुरुक्षेत्र की रण से पहले, रणभूमि में आने से पहले 12 साल जब ये लोग वनवास में थे तो दुर्योधन वो प्रैक्टिस रोज किया करता था, गदा युद्ध की प्रैक्टिस किया करता था। तो उसने उसके अखाड़े में भीम का पुतला बनाया था, भीम का लोहे का पुतला बनाकर भीम उसके लोहे के पुतले को मारा करता था वो गदा से, अपने द्वेष को उगलने के लिए। तो 12 साल तक उसने भीम के पुतले, लोहे के पुतले को उस गदा से मारा था। तो अब वो यही सोच रहा था कि अब साक्षात भीम सामने है, तो क्यों ना मैं जो मैंने ट्रेनिंग ली उसका फायदा क्या, अरे नकुल सहदेव से क्या युद्ध कर कर मजा आएगा। तो अकेला बचा हुआ दुर्योधन, उसने अपनी द्वेष की पराकाष्ठा दिखा दी युद्ध के अंत में, जब उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा कर भीम का चुनाव किया। कल्पना नहीं कर सकते, सोचिए भीम कितना, एक कई लोग इसका गुणगान करते, देखो भीम दुर्योधन कितना शूरवीर, डरा नहीं वो उस, हाँ कई लोग बोलते हैं देखो दुर्योधन से हमें ये सीखना चाहिए, डरा नहीं उसने भीम का चुनाव किया, और कई कहते अरे मूर्ख था, अरे यदि नकुल सहदेव से कर लेता था तो 12 साल फिर से ये लोग जाते थे वनवास। तो अलग अलग दृष्टिकोण है। यहां पर आचार्य हमारे बताते हैं कि द्वेष के कारण उसने चुनाव किया। तो अब दुर्योधन अपना अगला श्लोक द्रोणाचार्य को कहता है, बाकी आप लोग सब सारे योद्धा, आप लोग सब भीष्म एवा भिरक्षन्तु, कि आप लोग सब केवल भीष्म पितामह की रक्षा में लगे रहना। तो यहां पर दुर्योधन वो इसलिए भी कह रहा है कि भीष्म पितामह वो बहुत वृद्ध हैं, उनकी आयु बहुत हो गई है, तो इसलिए बाकी सब योद्धा भीष्म पितामह की रक्षा में लगे रहना। और इसलिए भी वो कह रहा है बाकी योद्धाओं को, ताकि भीष्म पितामह को उनका कोई गुणगान करे, तो इसलिए उनका गुणगान करते हेतु कह रहा है कि ये सबसे प्रमुख हमारे सेनापति और सबसे प्रमुख योद्धा हैं, तो इनकी रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर भीष्म पितामह की थोड़ी चापलूसी और बाकी योद्धाओं को भी प्रोत्साहन देने के लिए कि तुम्हें भी कुछ करना है, तुम लोग खाली सुनते मत रहो मैं जो बोल रहा हूं, खाली खड़े मत रहना, तुम्हें क्या करना है ये भी मैं बता रहा हूं। तो दुर्योधन इसलिए अब ये अंतिम श्लोक द्रोणाचार्य से कह रहा है, भीष्म एवाभिरक्षन्तु तो शब्द से प्रतीत होता है मानो दुर्योधन वैष्णव सेवा कर रहा है, क्योंकि वो सभी योद्धाओं को कह रहा है कि इनकी रक्षा करो। तो यहां पर ये प्रश्न पूछा गया है कि जैसे एक भक्त दूसरे भक्त की रक्षा करता है, तो वैसे शायद ये प्रतीत हो रहा होगा कि दुर्योधन यहां पर भीष्म पितामह जो कि एक महाजन है, कि भीष्म पितामह की रक्षा कर रहा है दुर्योधन, परंतु यहां पर दुर्योधन का भाव कुछ और है। तो दुर्योधन का भाव समझने से पहले थोड़ा हम भीष्म पितामह के विषय में चर्चा करेंगे कि एक तो भीष्म पितामह को ये दुर्योधन की रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भीष्म पितामह बड़े बड़े देवता वो भीष्म पितामह से घबराए थे। यदि ये कथा आपको पता है कि भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या था, शांतनु, और शांतनु हालांकि इनका विवाह हुआ था गंगा देवी से, तो गंगा पुत्र भीष्म और उस समय इनका नाम था देवव्रत, परंतु शांतनु ये एक मछुआरे की पुत्री से आकर्षित हुए थे जिसका नाम था सत्यवती, और सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, परंतु इनके जो पिताजी ने कहा कि भाई मेरी पुत्री जाएगी वहां पर तो वो एक दासी के रूप में ही रहेगी, तुम इतने बड़े महाराज, यदि तुम मेरी पुत्री से आकर्षित हुए हो तो उसे कुछ देना होगा तुम्हें। तो हम ये कथा जानते हैं कि उसने रखा था प्रस्ताव कि जो मेरी पुत्री का पुत्र होगा वो आगे चलकर राजा बनना चाहिए, तो महाराज शांतनु ने मना कर दिया है, देवव्रत पहले से है वो राजा बनने वाला है। तो देवव्रत को पता लगा कि इनके पिता की इच्छा है कि इसके साथ विवाह करना, परंतु इसने ये कंडीशन रख दिया है, तो देवव्रत जाते हैं और देवव्रत वहां पर जाकर ये व्रत लेते हैं कि मैं नहीं, पहले उन्होंने व्रत लिया कि मैं राजा का पद कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर देखिए ये सत्यवती के पिता बहुत चतुर, इन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा पुत्र करेगा, तब फिर उन्होंने व्रत तुरंत उसी समय, ऐसा नहीं कि बाद में घर जाकर शांतनु महाराज से कंसल्ट किया कि मैंने जैसे प्रस्ताव रखा था, अब उसमें वहीं पर तुरंत उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली आजीवन ब्रह्मचर्य, और ये प्रतिज्ञा उन्होंने जब ली तो सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब ये प्रश्न पूछा गया है कि उस समय कोई ब्रह्मचर्य के जीवन को लेता था तो ये बहुत साधारण बात थी, आजकल कोई यदि इस व्रत को ले तो हो सकता है कि सभी लोग वर्षा करें, पता नहीं किसकी। तो आजकल तो यदि कलयुग में कोई ब्रह्मचारी बनता है तो हो सकता है कि पेपरों में खबर आए, परंतु उस समय जैसे आजकल विवाह कोई करता है तो वो पेपर में नहीं आती ना खबर कि वो क्या पेपर में आएगी, हम विवाह कर रहे हैं, हेडलाइंस आएगा वो पेपर में। तो वैसे ही ये पिछले युगों में कोई ब्रह्मचर्य को अपनाता वो बहुत साधारण बात थी, तो फिर यदि ये इतनी साधारण बात तो फिर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा क्यों की जब इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, क्यों पुष्पों की वर्षा की? हाँ नहीं नहीं वो कारण नहीं, क्षत्रिय भी ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते थे, बहुत ही विशेष कारण है कि देवताओं ने क्यों पुष्पों की वर्षा की। बहुत से आए दिन ब्रह्मचारी बन रहे थे उस युग में, तो हाँ पिता की इच्छा के लिए नहीं, बाकी सब पिता की इच्छा से ही ब्रह्मचारी बनते थे उस युग में, आजकल थोड़ा विशेष अलग हो गया है सब। उनका कोई स्वार्थ होगा उसमें। कारण यह था कि साधारणतः जो ब्रह्मचारी जीवन को अपनाते थे उस युग में, वो ब्रह्मचार्य पालन कहां करते थे, जंगल में जाकर, परंतु भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे राजमहल में रहकर, राजमहल के ऐशो आराम के बीच में वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, ये सबसे भीषण प्रतिज्ञा थी। क्योंकि देवतागण वो जानते थे कि विषय भोग के बीच में अपने आप को संयमी बना के रखना, इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ी तपश्चर्या और कोई नहीं। क्योंकि वो लोग सब सोमरस अप्सरा और इन सब के बीच में थे, तो उन्होंने जब ये सुना कि ये भीष्म, ये देवव्रत, कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले कहां पर, मानो ये इस प्रकार से है कि कोई बियर बार में जाकर या परमिट रूम में जाकर वो दूध पी रहा है, तो इसलिए ये सारे देवता ये पुष्पों की वर्षा करने लगे कि ऐसा व्रत ब्रह्मचर्य का किसी ने नहीं लिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब वो अकेले उन्होंने पाश्चात्य देश में प्रचार शुरू किया, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की तुलना भी भीष्म पितामह से की गई है कि श्रील प्रभुपाद जी घिरे हुए थे, ऐसे देश में गए जहां पर चारों तरफ केवल ऐशो आराम, और श्रील प्रभुपाद अकेले थे। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद के पीछे यहां पर कोई उन्हें पूछने वाला था कि वहां पर श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, या कोई आकर देखने वाला था। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी तुरंत वहां पहुंचते ही सोचे थे कि आगे चलकर इतने केंद्र खुलेंगे, इतने भक्त बनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी अकेले जाकर वहां पर, श्रील प्रभुपाद जी सब कुछ छोड़कर वहां के ऐशो आराम का जीवन भी जी सकते थे, और घिरे हुए, इसलिए श्रील प्रभुपाद उन्होंने अपने अंतिम चरण में कहा कि भगवान श्री कृष्ण दो बार उन्होंने मेरी परीक्षा ली। सबसे पहले बार उन्होंने मेरी परीक्षा ली जब उन्होंने मेरा सब कुछ हर लिया, मेरा धंधा पैसा परिवार सब कुछ हर लिया। ये सबसे पहली परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ली, तो सब कुछ हरने के बाद ये परीक्षा ली, और दूसरी परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ली जब उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, सारा ऐशो आराम धन दौलत सब कुछ दिया, तो ये उनकी दूसरी परीक्षा थी। और ये दूसरी परीक्षा पहली परीक्षा से ज्यादा कठिन थी, और श्रील प्रभुपाद दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। कि वो वैसे ही थे जब सब कुछ हर लिया गया था उनसे, और वो वैसे ही थे जब सब कुछ दिया गया था। तो इसे कहते हैं असली विरक्त, कि जो सब कुछ छोड़ छाड़कर और जंगल में किसी गुफा में रह रहा है, जहां पर वैसे भी भोग करने के कोई साधन नहीं है, तो जहां पर कोई भोग करने के साधन नहीं है वहां पर वैसे ही कंदमूल ही खाएगा वो, और तो कुछ मिलेगा नहीं। परंतु जो ऐशो आराम के बीच में, अब सोचिए भीष्म पितामह अपना ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसा नहीं था कि कोई ब्रह्मचारी आश्रम था वहां पर, कि वहां पर रोज बहुत से ब्रह्मचारियों के साथ बैठकर वो शास्त्र अध्ययन और ब्रह्मचारी क्लास और ये सब कुछ हुआ करता। वो वहां पर किसके मध्य में थे, ये सब अलग अलग प्रकार के राजा युवराज और उनकी रानियां पटरानियां दासियां, इन सब के बीच में भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को लिए हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। इसलिए भीष्म पितामह को सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कहा गया है, क्योंकि इनके तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कोई नहीं कर सका, इसलिए सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो ये भीष्म पितामह की सारे देवता उन्होंने अपनी हार मान ली, उन्होंने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उन्होंने अपनी हार मान ली कि हम इस भीष्म के किसी मैच में नहीं आते, कोई मेल नहीं हमारा भीष्म के साथ। तो यहां पर मानो दुर्योधन ये नहीं जान रहा कि जिन्होंने इन सारे बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया है, और यहां पर दुर्योधन बोलता है रक्षन्तु, रक्षा करना, ये नहीं जानता कि अरे ये सबकी रक्षा किए हैं अब तक, इनके अंदर ऐसे गुण हैं। तो भीष्म पितामह यहां पर वो भीष्म एवा भी रक्षन्तु, एक तो फिर से गलती की दुर्योधन ने ये बोलते हुए, पहले गलती की भीमा भी रक्षितम, क्योंकि अब जैसे जैसे ये युद्ध का समय पास आ रहा है दुर्योधन वो विचलित हो रहा है, और इस विचलित अवस्था में उसके शब्द भी वो कुछ बड़बड़ाना शुरू कर रहा है जो उसे भी समझ में नहीं आ रहा। तो भीमा भी रक्षितम, भीष्म एव भी रक्षन्तु, ये सब कुछ बोलना शुरू किया है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हालांकि ये लग रहा है कि वो वैष्णव सेवा कर रहा है, परंतु उस सेवा में दुर्योधन का कापट्य एवं पाषंड छिपा है, कि दुर्योधन वो इसलिए कह रहा है सबको कि भीष्म की रक्षा आप लोग सब करना, क्योंकि यदि भीष्म रक्षित रहेंगे तो फिर ये युद्ध मैं जीत सकूंगा। तो इसके पीछे वो सेवा नहीं कर रहा भीष्म देव की, वो भीष्म देव को अपनी सेवा में लगा रहा है, ये उल्टा हो रहा है यहां पर, इसलिए उसका कापट्य एवं पाषंड यहां पर दिख रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार कलयुग में तीन प्रकार के पाषंड हैं, ये शास्त्र लिख दिया शास्त्र के अनुसार। एक तो भगवान की जो प्रामाणिक सेवा में लगे हैं उनका जब विरोध होता है तो दुर्योधन वो पांडवों का विरोध कर रहा था जो भगवान की सेवा में लगे थे, तो वो एक पाषंड उसके अंदर था। जैसे कि हमने गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया तो चैतन्य महाप्रभु जब वो कीर्तन किया करते थे और वो भी उच्च स्वर में, हमने झारखंड के जंगल से चैतन्य महाप्रभु गुजरे इसका हमने वर्णन लिया था कि उच्च स्वर में चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई पाषंडी वो चैतन्य महाप्रभु का विरोध करते और वो कहते ये क्या जोर जोर से चिल्लाकर नाम ले रहे हो विष्णु का, और वो कारण क्या देते, कह रहे तुम्हारे चिल्लाने की वजह से उनकी नींद भंग हो जाएगी, वो जो योग निद्रा में है विष्णु उनकी नींद भंग हो जाएगी और वो गुस्सा हो जाएंगे और प्रलय आ जाएगा, बंद करो ये, धीरे धीरे बोलो। तो देखिए ये इस प्रकार से विरोध हुआ करता था, और वही विरोध जब श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को हरिनाम करने के लिए कहा वहां की सड़कों पर, तो वहां के जो पादरी और जो मिशन के लोग वहां के, वो लोग चिल्लाया करते थे भक्तों के ऊपर कि क्या हरे कृष्ण महामंत्री भगवान का नाम, वो कहते थे कि भगवान का नाम ये जिह्वा पर आना ही नहीं चाहिए। सोचिए पूरा उल्टा, ये भगवान का नाम जिह्वा पर आना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इतनी प्रदूषित है हमारी जिह्वा और भगवान का नाम मानो अपनी जिह्वा से भगवान को जूठा कर रहे हो तुम लोग। देखिए क्या तर्क लगाया ये कि जैसे हम अपनी जिह्वा यदि जूठा हो जाता है तो हम ना हाथ धोते, तो ये भगवान का नाम जूठा कर रहे हो जिह्वा पर लेकर, ना ना ना, वो सबसे शुद्ध भगवान है, उनका नाम जिह्वा पर कभी नहीं होना चाहिए। वो तो यहां तक कि उन्होंने कहा कि गॉड ये भी नहीं अपने जिह्वा पर लाना चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा हां, तो फिर आगे वो कहते हैं कि गॉड के बदले जी ओ डी बोलना, गॉड भी नहीं बोलना जी ओ डी। प्रभुपाद ने कहा फिर कुछ वर्ष बाद आपके ही अनुयायी बोलेंगे अब ये जी ओ डी भी नहीं बोलना, डी ओ जी बोलो, डॉग। तो इस प्रकार से ये एक श्रेणी है पाषंडियों की, जो कि विरोध, जब भगवान का भगवान की प्रामाणिक सेवा होती है तो उसका विरोध, और दूसरा प्रकार है अपने मन माने ढंग से भगवान की सेवा करना कि शास्त्र के अनुसार नहीं। और ये श्रेणी बहुत पाई जाती है कि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने अनुसार भगवान श्री कृष्ण की, क्या कहते हैं उसे, प्रेम ही सबसे बड़ी भाषा है, और क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो हमारी प्रेम की भाषा समझते हैं। इसलिए एक व्यक्ति बंबई में हमसे मिले तो बोल रहे थे कि मैं ये सब नाटक वाटक नहीं करता, ये माला हाथ में लेके, ये सब प्रेम है हमारा भगवान से, और इसलिए हम उठते ही भगवान को चाय ऑफर करते हैं, क्योंकि जैसे हमें उठते ही चाय की आवश्यकता पड़ती है इसलिए भगवान को भी उठाते ही हम चाय देते हैं, गरम गरम जो भी लिप्टन, ये चाय अर्पित करते हैं। और फिर कई बार कई लोग कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से वो कहने लगे कि वो भगवान श्री कृष्ण का अर्च विग्रह रखे थे अपने घर में और उन्हें काला कपड़ा पहनाए हुए थे, तो प्रभुपाद ने पूछा ये काला कपड़ा क्यों पहना है इतना, बुरका जैसे का सब काला काला सा, नहीं नहीं वो क्या है कि बहुत तेज निकलता है उनके शरीर से तो दर्शन ठीक से नहीं होता हमारा, इसलिए जब काला कपड़ा पहनाते हैं तो वो काला कपड़ा वो तेज को रोक देता है, फिर हम दर्शन ठीक से ले पाते हैं। तो ये सब अपने मन घड़ंत तरीके भगवान की उपासना करने के। कई एक बार एक भक्त वो नरसिंह भगवान की पूजा किया करते थे, तो उन्होंने नरसिंह भगवान के इतने सारे जो भुजाएं हैं, मेरे ख्याल से 16 हैं, 16 भुजाएं, तो उनमें नरसिंह भगवान अलग अलग शस्त्र लिए, तो सारे शस्त्र का वर्णन है कि कौन कौन से शस्त्र किन किन हाथों में है नरसिंह भगवान के। इन्होंने नरसिंह भगवान के एक हाथ में स्टेनगन दे दिया, एक हाथ में वो राइफल रिवॉल्वर, तो पूछा गया ये सब क्या है, नहीं आजकल के ये वेपन्स आजकल के है ना, तो कलयुग में शायद नरसिंह भगवान को इनकी जरूरत पड़ेगी, रिवॉल्वर स्टेनगन, फिर आगे चलकर वो न्यूक्लियर बॉम्ब एटम बॉम्ब ये सब भी होगा शायद। जैसे अक्सर हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि गणेश चतुर्थी, कि ये गणेश उत्सव के समय कि गणेश जी को क्या क्या नहीं बनाया जाता, कि कभी उनको विकेट कीपिंग ग्लव्स पहना दिया है और उनका नाम है मोरेश्वर गणेश, क्योंकि एक विकेट कीपर थे पहले किरण मोरे, फिर वो जब कारगिल का युद्ध चल रहा था उस समय बंबई में गणेश जी के हाथ में AK-47 दिया था कि गणेश जी भारत की रक्षा कर रहे हैं, फिर एक गणेश जी उनको हेलमेट और बैट हाथ में दिए कपिलेश्वर गणेश। तो ये सब मन घड़ंत तरीके से जब किसी की आराधना होती है तो ये दूसरा प्रकार है अपने मन माने ढंग से उनकी सेवा करना, और तीसरा भगवान की सेवा के नाम पर इंद्र तृप्ति करना, और ये दुर्योधन की श्रेणी, ये तीसरी श्रेणी है कि भगवान के नाम पर, कि भगवान की सेवा हेतु हम सब कुछ कर रहे हैं, भगवान की सेवा हेतु ये आयोजन किया है हमने इस सत्संग का या इस भक्ति की क्रिया का। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे ये दो, एक तो व्यावसायिक कथावाचक और व्यावसायिक पुजारी, ये दोनों श्रेणी में आते हैं, कि भगवान के विषय में हो रही है कथा परंतु उसके बदले में इतनी धनराशि इकट्ठा हो रही है कि बंगले गाड़ी और क्या क्या नहीं बन रहे, उसको इस्तेमाल करते हेतु कि इकट्ठा हो रही है धनराशि किसके लिए, भगवान की सेवा हेतु, परंतु भगवान की सेवा कम और फिर उसमें शास्त्र भी कोट भी करते हैं, अरे भगवान से ज्यादा तो भक्त की सेवा होनी चाहिए ना, और हम हैं उनके भक्त तो हमारी सेवा ज्यादा होनी चाहिए उनसे। तो ये जो व्यवसायिक, व्यवसायिक का अर्थ क्या है, प्रोफेशनल, इसे कहते हैं अंग्रेजी में प्रोफेशनल, और फिर व्यवसायिक पुजारी कि भगवान की पूजा हो रही है कि जितनी दान दक्षिणा आ रही है उस पर निर्भर करता है कि पूजा का टाइम कितना रहेगा, कि यदि 10,000-15,000 है तो 2 घंटा पूजा, यदि 25,000 के ऊपर है तो वही पूजा और देर तक घुमाएंगे, फिर कि वहां से जितने पत्ते बढ़ रहे हैं यहां से उतनी पूजा और उसकी उसकी अवधि बढ़ रही है पूजा की। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर इनको कहा करते थे बादाम भंगी पुजारी, कि ये पुजारी कई ऐसे थे कि जो जब शालिग्राम, शालिग्राम को आप देखे होंगे, शालिग्राम की जब पूजा होती थी तो कई शालिग्राम का दर्शन करने के लिए बादाम लेकर आते थे, तो ये पुजारी कहते थे हाँ हम बादाम अभी ऑफर करेंगे शालिग्राम को, तो पर्दा बंद करते थे और वो बादाम फिर खुद खाते थे, लेकिन वो कैसे खाते थे, क्योंकि बादाम को फोड़कर खाना पड़ता है, तो शालिग्राम उठाकर बादाम फोड़ते थे, इसलिए बादाम भंगी शालिग्राम पुजारी, कि शालिग्राम को लेकर वो बादाम फोड़ते थे और अंदर खाकर बाद में सबको दरवाजा खोलकर हाँ देखो खा लिया। और ये सब सत्य बातें हैं, कोई ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, ये सत्य बात। तो यहां पर दुर्योधन वो भी जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुर्योधन भीष्म पितामह की सेवा हेतु सबको कह रहा है चलो चलो सब लोग हम सब सेवा में लगते हैं, इनके इनकी रक्षा करते हैं, क्यों, ताकि ये हमारी सेवा में लगे, क्योंकि ये फिर हमें दिलाएंगे क्या, पूरा राज्य, ये राजगद्दी इनके द्वारा हमें प्राप्त होगी। इसलिए यहां पर शास्त्र के अनुसार दुर्योधन ने जो कुछ कहा श्लोक क्रमांक 3 से 11 तक, उसके हरेक वाक्य के पीछे, हरेक शब्द के पीछे, हरेक अक्षर के पीछे उसकी राजनीति, उसका कापट्य और उसका पाषंड छिपा। तो अब आगे संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार, कि अब जब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इन्होंने दुर्योधन का इतना लेक्चर सुन लिया, तो इतना लेक्चर सुनने के बाद अब क्या वो करते हैं इसका विवरण दे रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को आगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हाँ भाई भाई शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय। जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा।
अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे